एक कत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है अबंडेंस, द फ्यूचर इज बेटर देन यू थिंक।
अबंडेंस यानी प्रचुरता, ये शब्द ही अपने आप में कितना पॉजिटिव है ना।
सही कहा, और आजकल के माहौल में तो खासकर, जहां देखो बस समस्याएं, चुनौतियां, कमी, इसी की बात होती है।
बिल्कुल, तो ऐसे में ये किताब एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। ये कहती है भाई रुको, शायद भविष्य उतना बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, शायद वो काफी बेहतर हो सकता है।
और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, मतलब लेखक पीटर डेमेंडिस और स्टीवन कोटलर बाकायदा तर्क देते हैं, उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तेज रफ्तार तरक्की हो रही है उससे हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं।
बड़ी समस्याएं मतलब?
जैसे
जैसे साफ पानी, सबके लिए भोजन, सस्ती और साफ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा,
यहाँ तक कि व्यक्तिगत आजादी भी।
हाँ उसकी भी बात है।
तो ये एक बड़ा दावा है, इसमें कोई शक नहीं।
और ये सवाल भी दिमाग में आता है कि भाई अगर पिछले 100 सालों में इतनी तरक्की हुई है, आंकड़े तो यही दिखाते हैं, जीवन स्तर सुधरा है, गरीबी कम हुई है,
हाँ बिल्कुल,
तो फिर हम इतने निराश क्यों रहते हैं? हर तरफ एक कमी का माहौल क्यों महसूस होता है?
सही सवाल है, और ये किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। तो चलिए पहले उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। पीटर एच डायमंडिस, इनका परिचय ही बड़ा अनोखा है।
हाँ मतलब ये कोई टिपिकल लेखक नहीं है, वो एक उद्यमी है, वैज्ञानिक है और भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर एक विजनरी माने जाते हैं।
और उनकी पढ़ाई MIT से इंजीनियरिंग और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मेडिसिन।
सोचिए, इंजीनियर भी और डॉक्टर भी, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में कितना दिलचस्प है।
बिल्कुल, इससे उन्हें टेक्नोलॉजी की गहरी समझ तो मिलती ही है, साथ ही ये भी पता चलता है कि इसका इंसानों पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा।
और वो सिर्फ सोचते नहीं, करते भी हैं, जैसे वो एक्सप्राइज फाउंडेशन के संस्थापक हैं।
हाँ, ये कमाल की संस्था है, ये बड़े बड़े नाम रखती है उन आविष्कारों के लिए जो मानवता की बड़ी समस्याओं को हल कर सकें।
जैसे वो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट वाला एंसारी एक्सप्राइज काफी मशहूर हुआ था।
जी, फिर सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के भी को फाउंडर हैं जो लीडर्स को भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाती है।
और तो और, प्लैनेटरी रिसोर्सेज नाम की कंपनी भी शुरू की जो एस्ट्रॉइड माइनिंग पर काम करती है।
मतलब सोच का दायरा बहुत बड़ा है, जाहिर है वो अबंडेंस या प्रचुरता में यकीन रखते हैं।
और उनके साथ है स्टीवन कॉटलर, वो एक जाने माने साइंस जर्नलिस्ट है।
हाँ, उनकी खूबी यह है कि वो मुश्किल साइंटिफिक बातों को भी आसान और मजेदार तरीके से समझा देते हैं। तो इस किताब में डायमंडीज का विजन है और कोटलर की कहानी कहने की कला।
तो मतलब डायमंडीज ने ये सब होते हुए देखा है, उन्होंने उन तकनीकों को पनपते देखा है जो दुनिया बदल सकती हैं। ये उनके तर्क को एक वजन देता है ना?
एकदम, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, तो अब किताब के मूल आइडिया पर आते हैं, ये अबंडेंस का फंडा है क्या आखिर?
देखिए, मूल बात ये है कि हम दुनिया को अक्सर कमी यानी स्केयरसिटी के नजरिए से देखते हैं। संसाधन कम है, मौके कम है, हर चीज सीमित है।
हाँ ये तो हमारी आम सोच है, आधा ग्लास खाली देखना।
बिल्कुल, किताब कहती है कि इस सोच को बदलो, सबूत देखो, ट्रेंड्स देखो, टेक्नोलॉजी चीजों को लगातार सस्ता, बेहतर और ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध करा रही है। तो कमी की जगह प्रचुरता यानी अबंडेंस की सोच अपनाओ।
प्रचुरता मतलब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं?
नहीं नहीं सबके लिए। उनका तर्क है कि टेक्नोलॉजी में वो ताकत है कि वो पानी, भोजन, ऊर्जा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकती है।
और उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, आजादी जैसी चीजें भी।
हाँ, वो पूरा पिरामिड है जिसकी बात वो करते हैं। तो ये किताब एक तरह से भविष्य का नक्शा बनाने की कोशिश है, सबूतों के आधार पर।
तो ये कैसे काम करता है, किताब कैसे समझाती है ये सब?
किताब पहले तो ये समझाती है कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। हमारे दिमाग की बनावट, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, वो खतरों पर फोकस करती है।
अच्छा, वो सर्वाइवल वाली बात।
हाँ, और मीडिया भी अक्सर बुरी खबरों को ज्यादा तवज्जो देता है। फिर किताब उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताती है जो सब कुछ बदल रही हैं, और यहीं पर वो 6 D's का फ्रेमवर्क आता है।
ये 6 D's वाला कॉन्सेप्ट दिलचस्प लग रहा है। चलिए किताब की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 6 हिस्से हैं इसमें, है ना?
जी हाँ। पहला हिस्सा है पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, ये स्टेज सेट करता है।
यहीं पर वो अबंडेंस पिरामिड आता है।
तन, घर, फिर बीच में ऊर्जा, शिक्षा, कम्युनिकेशन और सबसे ऊपर स्वास्थ्य और आजादी।
और इसी में वो दिमाग और मीडिया वाली बात भी है।
बिल्कुल, कि कैसे हमारा दिमाग खतरों पर फोकस करता है और मीडिया उसे और बढ़ाता है। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि पिछली सदी में जीवन स्तर असल में बहुत सुधरा है।
ठीक है, तो नजरिए के बाद आता है भाग दो, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज यानी घातीय प्रौद्योगिकियां। ये शायद सबसे अहम हिस्सा है।
हाँ, ये किताब का कोर है। यहाँ वो मूर के नियम से आगे बढ़कर दिखाते हैं कि कैसे AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी कई तकनीकें दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं।
और वो 6Ds?
हाँ, वो यहीं आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि तकनीक कैसे फैलती है। पहला है
डिजिटलाइजेशन,
डिजिटलीकरण, मतलब किसी चीज का डिजिटल बन जाना।
सही, जैसे ही कोई चीज डिजिटल होती है उसे कॉपी करना, शेयर करना लगभग मुफ्त हो जाता है। सोचिए पहले फोटो भेजना कितना मुश्किल था। हाँ, अब व्हाट्सएप पे सेकंडों में। अगला डी,
डिसेप्शन यानी धोखेबाजी। शुरू में ये घातीय वृद्धि बहुत धीमी लगती है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है।
अच्छा, जैसे शुरू के डिजिटल कैमरे, किसी ने सोचा नहीं था कि वो फिल्म को खत्म कर देंगे।
बिल्कुल। फिर आता है डिसरप्शन यानी विघटन। अचानक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और सस्ती हो जाती है कि पुरानी इंडस्ट्री हिल जाती है या खत्म ही हो जाती है। कोडा का उदाहरण सामने है।
और चौथा डी,
डीमटीरियलाइजेशन यानी विलोपन। भौतिक चीजें गायब होने लगती हैं।
जैसे अब फोन में ही कैमरा, GPS, म्यूजिक प्ले, टॉर्च, कैलकुलेटर सब आ गया।
एकदम। पांचवा है डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। चीजों की कीमत गिर जाती है, कई बार तो शून्य तक।
जैसे स्काइप या व्हाट्सएप कॉल, पहले ISD कॉल कितने महंगे थे।
सही पकड़ा। और आखिरी छठा डी है डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतांत्रिकरण।
मतलब जब कोई चीज लगभग मुफ्त हो जाती है तो वो सबके लिए उपलब्ध हो जाती है।
हाँ, जैसे ज्ञान विकिपीडिया पर या खबरें इंटरनेट पर। ये 6Ds मिलकर दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी चीजों को सबके लिए सुलभ बना सकती हैं।
कमाल का फ्रेमवर्क है ये तो, चीजों को देखने का बिल्कुल नया नजरिया।
और लेखक एक और बात पर जोर देते हैं, कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। जब ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलती हैं तो और भी शक्तिशाली हो जाती हैं।
अच्छा, जैसे AI और रोबोटिक्स का मिलना।
हाँ, या AI, जीनोमिक्स और सेंसर्स का मिलकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाना।
समझ गए। तो अब आते हैं पिरामिड के बेस पर, भाग 3, बिल्डिंग द बेस ऑफ द पिरामिड, पानी, भोजन, ऊर्जा। यहाँ क्या हो रहा है?
यहाँ बहुत उम्मीद जगाने वाली बातें हैं। पानी के लिए डीन कॉमन का स्लिंगशॉट प्यूरिफायर है जो किसी भी पानी को साफ कर सकता है।
अच्छा।
समुद्री पानी को मीठा बनाने की लागत कम हो रही है, नैनो फिल्टर आ रहे हैं। लक्ष्य है क्या अगले 10 साल में सबको साफ पानी मिल सकता है?
ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और भोजन?
भोजन में वर्टिकल फार्मिंग, मतलब शहरों में बिल्डिंग्स के अंदर खेती, कम पानी, कम जगह, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलें जो ज्यादा पैदावार दें, एक्वापोनिक्स। यहां तक कि लैब में मीट बनाने पर भी काम चल रहा है।
लैब में मीट, वाओ। और ऊर्जा?
ऊर्जा में सबसे बड़ी कहानी है सोलर पावर की। इसकी कीमत इतनी तेजी से गिरी है कि ये जल्द ही कोयले और गैस से सस्ता होने वाला है। बायोफ्यूल, स्मार्ट ग्रिड्स पर भी काम हो रहा है।
ये तो सचमुच बुनियादी जरूरतें पूरी करने की दिशा में बड़े कदम लग रहे हैं। पर ये सब करेगा कौन? क्या सिर्फ सरकारें? यहां आता है भाग 4, फोर्सेस ऑफ अबंडेंस।
बिल्कुल, ये हिस्सा बताता है कि बदलाव लाने वाले कौन हैं। और ये सिर्फ सरकारें या बड़ी कंपनियां नहीं हैं।
तो कौन है?
3 मुख्य ताकतें हैं। पहली, DIY इनोवेटर, मतलब डू इट योरसेल्फ वाले लोग।
अच्छा, जैसे गैराज में काम करने वाले इनोवेटर्स।
हाँ, आज सस्ते सेंसर्स, 3D प्रिंटर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने छोटे ग्रुप्स या अकेले लोगों को भी बड़ी समस्याएं सुलझाने की ताकत दे दी है।
दूसरी ताकत,
टेक्नो फिलैंथ्रोपिस्ट्स यानी टेक्नोलॉजी से अमीर बने परोपकारी लोग, बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे।
हाँ, वो अपनी दौलत और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं।
सही। और तीसरी, शायद सबसे अहम ताकत, राइजिंग बिलियन।
ये कौन है?
दुनिया के सबसे करीब लगभग 3 अरब लोग जो अब इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन से जुड़ रहे हैं।
अच्छा, तो वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि योगदानकर्ता भी बन सकते हैं।
बिल्कुल, वो एक विशाल बाजार भी हैं और करोड़ों नए दिमाग भी जो समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं।
ये बात तो है, इनोवेशन अब सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित नहीं रहा। अच्छा, अब पिरामिड के ऊपर चलते हैं, भाग 5, पीक ऑफ द पिरामिड, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, शिक्षा।
हाँ, स्वास्थ्य में देखिए, जीन सीक्वेंसिंग सस्ती हो रही है, मतलब आपकी जेनेटिक बनावट के हिसाब से दवा। एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारी पहचानने में। रोबोटिक सर्जरी सटीक हो रही है।
स्वतंत्रता के बारे में क्या?
इंटरनेट और मोबाइल, जानकारी तक पहुंच, लोगों का आपस में जुड़ना, अपनी आवाज उठाना, ये सब तानाशाही के खिलाफ बड़े हथियार हैं। पारदर्शिता बढ़ रही है।
और शिक्षा?
शिक्षा में तो क्रांति आ ही रही है। खान अकेडमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स को देखिए, दुनिया भर की बेस्ट एजुकेशन मुफ्त या बहुत कम दाम पर उपलब्ध है।
और भविष्य में शायद एआई ट्यूटर हर बच्चे को पर्सनल ट्यूशन देंगे।
बिल्कुल, उसकी जरूरत और रफ्तार के हिसाब से।
ये सब सुनकर तो लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हैं, पर क्या सब कुछ इतना अच्छा ही है? कोई खतरे नहीं है? ये भाग 6 स्टेयरिंग द फ्यूचर शायद इसी की बात करता है।
हाँ, लेखक यहाँ यथार्थवादी हैं। वो मानते हैं कि इन ताकतवर टेक्नोलॉजीज के खतरे भी हैं। एआई हाथ से निकल सकता है, बायोटेररिज्म हो सकता है, नौकरियां जा सकती हैं, डिजिटल खाई बढ़ सकती है।
तो फिर समाधान क्या है?
समाधान टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है, समझदारी से इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ा खतरा वो मानते हैं डर और निराशावाद को। अगर हम डर गए तो कोशिश ही नहीं करेंगे।
तो ये एक तरह से एक्शन कॉल है।
हाँ,
कि ये बेहतर भविष्य संभव है, पर इसे बनाना पड़ेगा। हमें चुनना होगा कि हम इसे बनाना चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य सबक क्या निकलते हैं, सबसे जरूरी बातें?
मेरे लिए पहला सबक है, निराशावाद पर सवाल उठाना सीखें। समझे कि हमारा दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है, मीडिया क्या दिखा रहा है और असलियत क्या है। आंकड़ों को देखें।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बुरी खबरों में न डूबें। दूसरा,
घातीय सोच को समझें और अपनाएं। वो 6 D's वाला फंडा, ये समझने में मदद करता है कि बदलाव कितनी तेजी से आ सकता है।
बिल्कुल। तीसरा क्या होगा?
तीसरा, कन्वर्जेंस की ताकत को पहचानें। जब अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलती हैं तो जादू होता है। AI प्लस रोबोटिक्स, AI प्लस बायो, ये सब भविष्य हैं।
और चौथा?
चौथा, अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है। DIY इनोवेटर्स, टेक्नो परोपकारी, राइजिंग बिलियन, ये सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। ये बहुत सशक्त करने वाला विचार है, खासकर भारत जैसे देश के लिए।
हाँ, यहाँ जमीनी स्तर पर बहुत टैलेंट है। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो याद रह जाती हैं, कुछ कोट्स?
हाँ, कई हैं। एक मुझे बहुत पसंद है, प्रचुरता का मतलब इस ग्रह पर सभी को विलासिता का जीवन देना नहीं है, बल्कि सभी को संभावनाओं का जीवन प्रदान करना है।
वाह, मतलब बेसिक जरूरतें पूरी हों ताकि लोग आगे बढ़ सकें, सीख सकें, अपनी क्षमता पहचान सकें।
एकदम। एक और है जो बिजनेस वालों को सोचना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक अवसर हैं।
हाँ, प्रॉब्लम को मौके की तरह देखना, ये सोच बदल देता है।
और एक और, प्रौद्योगिकी एक संसाधन मुक्त करने वाली शक्ति है। ये सिर्फ संसाधन खाती नहीं, बल्कि नए बनाती है या जरूरत कम करती है।
और वो डायमंड इसका का मशहूर कोट?
हाँ, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे स्वयं बनाना है, मतलब बैठो मत, कुछ करो।
ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सुनने वाले इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
जरूर। व्यक्तिगत स्तर पर तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम करें, निराशावाद से लड़ें, पॉजिटिव खबरें भी ढूंढें, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखें, शायद कोई नया स्किल सीखें, ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठाएं।
और उद्यमियों के लिए?
वो 6 D's का इस्तेमाल करके सोच सकते हैं कि उनके बिजनेस में क्या नया किया जा सकता है। और भारत की जो बड़ी समस्याएं हैं, पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनमें बिजनेस के मौके तलाश सकते हैं।
और समाज या सरकार के स्तर पर?
इनोवेशन का माहौल बनाएं, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी दें, स्कूलों में भविष्य की स्किल सिखाएं, लोकल लेवल पर मेकर स्पेस जैसी चीजों को बढ़ावा दें जहां लोग मिलकर कुछ नया बना सकें।
ये सब करने लायक बातें हैं। तो आखिर में इस किताब और हमारी इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? क्या चीज सबसे ज्यादा असर कर गई?
मेरे लिए शायद वो बदलाव की रफ्तार वाली बात। वो 6 D's का फ्रेमवर्क सच में सोचने का तरीका बदल देता है। और ये कि अब छोटे ग्रुप्स या अकेले लोग भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ये बहुत उम्मीद देता है।
और मेरे लिए ये समझना कि हम कितना ज्यादा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, जबकि असलियत शायद उतनी खराब न हो, ये किताब याद दिलाती है कि इंसान की क्रिएटिविटी और मिलकर काम करने की क्षमता में कितनी ताकत है। ये एक ज्यादा एक्टिव और होपफुल नजरिया देती है।
बिल्कुल, उम्मीद भी जगाती है और जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।